समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, सुप्रभात। कार्यक्रम आज सवेरे में मैं हूं आपके साथ फरहत नाज। जानी मानी शायर निदा फाजली कहते हैं कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। निदा फाजली के इन शब्दों को आवाज दी है चित्रा सिंह ने। कितनी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, आगे बढ़ते रहना और अपने सपनों को पूरा करना हमारा मकसद होना चाहिए, और यही है हमारी आज की सीख इस प्यारे से गीत से। और सुबह की शुरुआत अगर इस प्यारे से गीत से की जाए तो ये जो पूरा दिन है वो बन उठता है अपने आप में। तो इसी सीख के साथ आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, और आज मेरा साथ दे रही हैं मेरी सहयोगी नीना अरक्कल। नमस्कार नीना।
नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग फरहत, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग यू प्लेड इन द मॉर्निंग, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। वी ब्रिंग यू आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, wherein वी शेयर द लेटेस्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स, एज वेल एज सम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस डे, दैट इज 22nd ऑफ जनवरी।
जी नीना, और इसके अलावा अंत में हम कुछ जानी मानी शख्सियतों को भी याद करेंगे जिनकी आज जन्मतिथि या फिर पुण्यतिथि है। लेकिन आइए सबसे पहले मुख्य समाचारों से शुरुआत कर लेते हैं, तो क्या है खबर खास।
प्राइम मिनिस्टर्स फ्लैगशिप प्लेटफॉर्म फॉर प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन प्रगति हैज मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन विद द सक्सेसफुल कंडक्ट ऑफ इट्स 50th मीटिंग सिंस इट्स लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन 2015। प्रगति हैज ट्रांसफॉर्म्ड गवर्नेंस बाय इनेबलिंग रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड रेजोल्यूशन ऑफ की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज थ्रू डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टरियल रिव्यू। द प्लेटफॉर्म एग्जेम्प्लीफाइज कोऑपरेटिव federalism, bringing together the center, states and union ministries on a single digital interface. Over a decade, Pragati has helped accelerate decision-making, resolution of issues causing delay in key infrastructure projects and instilled a strong culture of accountability. Today, in this special series, we take a look at Hyderabad Metro Rail Project.
Hyderabad, the capital of Telangana, has emerged over the last two decades as one of India's most dynamic metropolitan economies, driven by rapid growth in information technology, pharmaceuticals, manufacturing and services. The Hyderabad Metro Rail project was conceived as a high-capacity mass rapid transit system to provide a reliable, efficient and sustainable urban mobility backbone for Hyderabad. Phase 1 of the Hyderabad Metro consists of three high-density corridors spanning 69.2 kilometers. The project was reviewed at the highest level under the Pragati mechanism chaired by Prime Minister Narendra Modi on 30th December 2015. Prime Minister issued a set of decisive directions to ensure that institutional and financial bottlenecks did not hinder commissioning. Given the project's PPP structure, the Government of Telangana, the Department of Economic Affairs and the Ministry of Urban Development were directed to closely coordinate to ensure smooth and timely commissioning of the metro. This led to coordinated efforts across multiple agencies to guarantee that the project of this magnitude was implemented through focused efforts. These Pragati-driven interventions brought clarity and momentum at a crucial stage of the project. These ensured that financial support, regulatory decisions, and intergovernmental coordination moved in parallel with construction activity, preventing delays that could have affected commissioning. As a result, the Hyderabad Metro was able to progress in a coordinated manner across three corridors, with successive sections becoming operational and rapidly attracting ridership. Hyderabad Metro has significantly reduced travel time on some of the city's most congested corridors, improved safety, and offered a reliable alternative to private vehicle use. The metro has also strengthened Hyderabad's economic geography by improving access between residential neighborhoods and major employment centers such as High-Tech City, Rai Durg, and commercial districts of Secunderabad and Uppal. With Suparna Saikia, Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
नीति आयोग ने नई दिल्ली में सीमेंट, एल्यूमिनियम तथा लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्रों के लिए कार्बन उत्सर्जन कम करने की कार्ययोजना पर रिपोर्ट जारी की। इस अवसर पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने भारत के विकास में एमएसएमई क्षेत्र और सतत आर्थिक विकास की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत करने के महत्व पर बल दिया, जो रोजगार, नवाचार और समावेशी विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। वहीं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में एक निर्णायक मोड़ पर है, जहां सुधारों का उद्देश्य उच्चतम सुरक्षा मानकों को बनाए रखते हुए ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि सरकार हाल ही में पारित परमाणु कानून के अंतर्गत विस्तृत नियम बनाने की प्रक्रिया में है। उन्होंने कहा कि सरकार जरूरी सुरक्षा उपायों से समझौता किए बिना निजी क्षेत्र सहित गैर सरकारी संस्थाओं की भागीदारी के लिए परमाणु क्षेत्र के द्वार खोल रही है।
The European Parliament has decided to suspend work on the European Union's trade deal with the United States in protest at US President Donald Trump's demands to acquire Greenland and threats of tariffs on European allies who oppose his plan. The EU Assembly has been debating legislative proposals to remove many EU import duties on US goods, a key part of the agreement struck in Turnberry, Scotland at the end of July, as well as to continue zero duties for U.S. lobsters initially agreed with Trump in 2020. The proposals require approval by the Parliament and EU governments. Many lawmakers have complained that the trade deal is lopsided, with the EU required to cut most import duties while the U.S. sticks to a broad rate of 15%. However, they had previously appeared willing to accept it, albeit with conditions such as an 18-month sunset clause and measures to respond to possible surges of U.S. imports. The Trade Committee of the European Parliament was due to set its position in votes on January 26, 27. However, this has now been postponed.
और नीना, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए बल का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने आर्कटिक द्वीप पर वाशिंगटन को स्वामित्व दिए जाने की अपनी मांग दोहराई है। लाओस में विश्व आर्थिक मंच को संबोधित करते हुए श्री ट्रंप ने कहा कि वे ग्रीनलैंड के अधिग्रहण पर चर्चा के लिए तत्काल बातचीत शुरू करना चाहते हैं। अमरीका और डेनमार्क उन 32 उत्तरी अमरीका और यूरोपीय देशों में शामिल है जो नाटो नामक सैन्य संगठन बनाते हैं। श्री ट्रंप ने डेनमार्क से ग्रीनलैंड के अधिग्रहण का विचार बार उठाया है। उन्होंने पहली बार इस विषय को वर्ष 2019 में अपने पहले कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति के रूप में रखा था। ग्रीनलैंड का कहना है कि वे अमेरिका का हिस्सा नहीं बनना चाहता, जिसका द्वीप पर पहले से ही एक सैन्य अड्डा है। श्री ट्रंप ने कहा कि उनके देश ने ग्रीनलैंड के अधिग्रहण के लिए बातचीत शुरू की है, क्योंकि अमेरिका के अलावा कोई भी देश इसे सुरक्षित करने की स्थिति में नहीं है।
The International Cricket Council, ICC, has rejected the request from the Bangladesh Cricket Board, BCB, to shift its team's T20 World Cup fixtures to Sri Lanka, saying the matches will proceed as scheduled. The ICC said there is no credible threat to the safety of Bangladesh players, officials or fans at any of the tournament venues in India. The decision was taken at an ICC board meeting held via video conference, which was convened to discuss the situation after the BCB raised concerns and sought in change in venues. The ICC board noted that relocating matches under the present circumstance could jeopardize the sanctity of ICC events and undermine the organization's neutrality as a global governing body. According to the ICC, the board reviewed multiple security assessments, including independent evaluations, all of which concluded that there was no credible threat to Bangladesh players. It is highly likely that if Bangladesh decided to pull out of the tournament, Scotland may replace Bangladesh as per current rankings.
वहीं महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में आज यूपी वॉरियर्स का सामना गुजरात जायंट से होगा. वडोदरा के कुटाम्बी स्टेडियम में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा. महिला प्रीमियर क्रिकेट लीग 2026 की मेजबानी मुंबई और वडोदरा कर रही है. टूर्नामेंट का नवी मुंबई लीग पूरा होने के बाद सभी 5 टीमें प्रतियोगिता के दूसरे चरण के लिए गुजरात पहुंच गई हैं.
In men's cricket, India defeated New Zealand by 48 runs in the first T20 of the 5-match series at Vidarbha Cricket Association Stadium in Nagpur last night. With this win, the men in blue took a 1-0 lead in the 5-match T20I series against the Black Caps. Chasing a target of 239 runs set by India, New Zealand could score only 190 for 7 wickets in the stipulated 20 overs. Glenn Phillips, with 78 in 40 balls, was the highest scorer for visitors. For hosts, Varun Chakravarti and Shivam Dubey took wickets each, while Arshdeep Singh, Hardik Pandya and Akshar Patel claimed a wicket each. Earlier, visitors won the toss and opted to field first.
और श्रोताओं, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर और रुख कर लेते हैं महानगरों की खबरों का. तो सबसे पहले नीना से जानते हैं चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद से जुड़ी खबरें.
यस फरद, द इंडियन Tourism and Industrial Fair turned 50 this year. The 70-day long fair began in 1974 and is held in island grounds every year during Pongal holidays. The fair has a lot of stalls which are informative and nature, and also entertainment shows. Cultural and art presentations are also a part of this exhibition. The games for children and the eatables provide a fun time for the families. The government also arranges special buses for the public to return their homes safely. Doctors at a private hospital in Chennai performed a rare bloodless combined heart surgery on a 69-year-old man with the extremely rare Bombay blood group. The patient had a severely narrowed heart valve that restricted blood flow from the heart, along with blockages in the blood vessels supplying the heart muscle. Doctors replaced the damaged valve and created new pathways for blood flow through bypass surgery in a single operation. And now moving over to Bengaluru, Karnataka Minister for Medical Education, Skill Development and Livelihood, Dr. Shankar Prakash R. Patil, has announced 75% concession on medical treatment for journalists above the age of 60 years. All the hospitals under the Department of Medical Education will extend this concession. He was speaking at an event to distribute healthy cards to senior journalists organized at Jayadev Institute of Cardiovascular Sciences and Research in Bengaluru yesterday. The minister also promised that in the coming days a decision will be taken to make it absolutely free for the senior journalists, saying that the government is committed to ensure senior journalists a dignified life after retirement. Dr. Patil noted that journalists contribute significantly to the welfare of the society and the government will take responsibility of providing social security to them. Hyderabad News. Telangana state government has given an administrative sanction of 488 crore rupees to build a new trumpet interchange to facilitate smooth traffic movements between Gachibowli and Shamshabad on the outer ring road. The Hyderabad Metropolitan Development Authority, in an official statement, said the detailed project report for the trumpet interchange has been completed and is presently at the tender stage. After infrastructure, other infrastructure works include widening and strengthening of pipeline road from Shankarpally to Manikonda, including junction development and widening of carriageways of outer ring road, were also approved. And now, Farhat, what's news from Delhi, Mumbai and Kolkata?
जी नीना, दिल्ली में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यातायात से जुड़ी खबर से, क्योंकि गणतंत्र दिवस जो परेड का रिहर्सल है इन दिनों चल रहा है, इससे जो है लोगों को काफी परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है. दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया है कि आज विजय चौक पर होने वाले बिटिंग रिट्रीट समारोह के पूर्वाभ्यास के कारण नई दिल्ली के कुछ हिस्सों में यातायात प्रतिबंध लागू रहेंगे। विजय चौक पर शाम 4 बजे से 6:30 बजे तक के लिए यातायात बंद रहेगा। कृषि भवन से विजय चौक की ओर रायसीना रोड पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। पूर्वाभ्यास के दौरान दारा शिकोह रोड, कृष्णा मिलन मार्ग और सुनहरी मस्जिद से आगे विजय चौक की दिशा में यातायात की अनुमति नहीं होगी। वहीं वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से ही बना लें और रानी झांसी रोड और मिंटो रोड जैसे वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। और कल 23 जनवरी है और कल फुल ड्रेस रिहर्सल भी होगी, तो ऐसे में सुबह के समय जो है वो मेट्रो का ही इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यातायात जो है वो 12:30 बजे तक जो है वो प्रतिबंधित रहेगा। वहीं दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि गणतंत्र दिवस के कारण मेट्रो स्टेशनों पर सुरक्षा जांच 27 तारीख तक और बढ़ा दी गई है। दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपनी यात्रा पहले से ही प्लान कर लें और सुरक्षा प्रक्रियाओं के लिए अतिरिक्त समय दें। वहीं वायुसेना बैंड ने कल नई दिल्ली के सेंट्रल पार्क में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर अपनी प्रस्तुति दी। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर देशभक्ति से सराबोर प्रस्तुतियों का आनंद लिया। और अब महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार की ओर से मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने राज्य के रायगढ़ जिले की पेन तहसील में विकास केंद्र के विकास के लिए विभिन्न वैश्विक कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी इस वक्त वहां मौजूद थे। तीसरे मुंबई के रूप में परिकल्पित ये परियोजना प्रौद्योगिकी, फिनटेक और डेटा केंद्रों के लिए अगली पीढ़ी के केंद्र के रूप में उभरेगी। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की है कि राज्य इस वर्ष के अंत तक अपनी प्रमुख सौर ऊर्जा परियोजना को पूरा कर लेगा। इस परियोजना का उद्देश्य किसानों को सौर बिजली की निरंतर आपूर्ति प्रदान करना है। और वहीं मुंबई स्थित नेहरू विज्ञान केंद्र ने 20 जनवरी को अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी और प्रबंधन पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हाइब्रिड सम्मेलन 2026 की मेजबानी की। इस आयोजन में भारत और विदेश के वैज्ञानिक, शिक्षाविद, उद्योग विशेषज्ञ, नीति निर्माता और छात्र एक साथ आगे आए। और अब पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ते हैं। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR संबंधी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। इसमें विसंगतियों और गैर मान्यता प्राप्त श्रेणियों के अंतर्गत नामों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना जरूरी है और प्रभावित मतदाताओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर दस्तावेज जमा करने और सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है। आयोग ने पश्चिम बंगाल के अधिकारियों को चल रहे SIR 2026 से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के इस महीने के आदेश का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पश्चिम बंगाल की जनता को आश्वासन दिया है कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी और ऐसे सभी मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अब महानगरों के मौसम का हाल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली के मौसम की। आज सुबह की शुरुआत हल्की ठंडक से शुरू हुई और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई में बादल छाए रहेंगे और धूप खिली रह सकती है दिन में। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। इसके अलावा कोलकाता में भी जो है मौसम साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
चेन्नई इज एक्सपेक्टेड फॉग और मिस्ट इन द मॉर्निंग एंड पार्टली क्लाउडी स्काई लेटर। द मिनिमम टेम्परेचर विल बी अराउंड 21 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 30 डिग्रीज। बेंगलुरु इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड फॉग और मिस्ट। द मिनिमम टेम्परेचर इज एक्सपेक्टेड टू बी 14 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 28 डिग्रीज। हैदराबाद इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू हैव अ फॉग और मिस्ट। द टेम्परेचर विल हॉवर बिटवीन मिनिमम ऑफ 17 डिग्रीज एंड अ मैक्सिमम ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस।
और आज है 22 जनवरी 2026 और अब वक्त हो चला है इतिहास के पन्नों को पलटने का। तो नीना, सबसे पहले क्या है आपके पास इतिहास में?
इन 1840 ब्रिटिश कॉलोनिस्ट रीच्ड न्यूजीलैंड। इन 1918 यूक्रेन डिक्लेयर्ड इट्स टोटल इंडिपेंडेंस। इन 1947 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यूनानिमसली अडॉप्टेड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन व्हिच सेट द गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशन।
और नीना, अगर बात की जाए 1963 की, तो देहरादून में आज ही के दिन दृष्टिहीनों के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना हुई थी।
In 1984, Apple computer aired an ominous new commercial during Super Bowl 18, the 60-second ad, which was directed by Ridley Scott and drew inspiration from George Orwell's dystopian novel 1984, was Apple's promise that its new computer would help consumers avoid a dark age of technology. 1992, Roberta Bronder came the first Canadian woman and the first neurologist to travel into space.
और नीना अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो 1970 की बात कर लेते हैं. बोइंग 747 का न्यूयॉर्क में आज ही के दिन पहली व्यावसायिक उड़ान शुरू हुई थी. और वहीं सन 2006 में श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे ने विद्रोही संगठन लिट्टे से बातचीत की पेशकश की.
In 2006, Evo Morales was sworn in as president of Bolivia, becoming the first person of indigenous descent to hold that office. In 2024, the consecration of the Ram Mandir in Ayodhya took place, which marked a major cultural moment in India.
और सन 2008 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने लोकसभा में विपक्ष के नेता लाल कृष्ण आडवाणी को आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री के रूप में पेश करने के प्रस्ताव का समर्थन किया. वहीं सन 2009 में फिल्म स्लमडॉग मिलेनियर का ऑस्कर के लिए नामांकन हुआ. सरकार ने सार्वजनिक निजी भागीदारी आधार वाली 3 बंदरगाह परियोजनाओं को भी आज ही के दिन मंजूरी दी थी. और अब इतिहास के बाद वक्त हो चला है अपने आखिरी सेगमेंट की ओर बढ़ने का और कुछ जानी मानी शख्सियतों को याद करने का. तो सबसे पहले हम याद कर रहे हैं क्रांतिकारियों में से एक, भारत की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले ठाकुर रोशन सिंह को. 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पास काकोरी स्टेशन के निकट काकोरी कांड के अंतर्गत सरकारी खजाना लूटा गया था. और ठाकुर रोशन सिंह ने काकोरी कांड में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, फिर भी उनके आकर्षक और रूबीले व्यक्तित्व को देखकर डकैतियों ने जो है राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और राजेंद्र नाथ लाहड़ी के साथ उन्हें फांसी की सजा दी थी.
Today we remember Heath Andrew Ledger, who was an Australian actor and music video director. He performed roles in several Australian television and film productions during the 1990s. His work comprised 19 films, including 10 Things I Hate About You, The Patriot, A Knight's Tale, Boback Mountain, The Brothers Grimm, Casanova, The Dark Knight, and many more. Here's an excerpt from his movie, The Dark Knight.
To them, you're just a freak. Like me. They need you right now. But when they don't, they'll cast you out.
Like a leper.
You see, their morals, their code. It's a bad joke. We've dropped at the first sign of trouble.
और श्रोताओं, आज ही के दिन जन्म हुआ था पेशे से नर्तकी और जो देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण थी अजीजन बाई का. स्वाधीनता आंदोलन से उनका कोई निजी फायदा नहीं था, लेकिन नाना साहेब और तात्या टोपे से बेहद प्रभावित हुई. अजीजन बाई के यहाँ आने वाले अंग्रेज सिपाहियों से वो अहम जानकारियां लेकर स्वतंत्रता सेनानियों तक पहुंचाती. कहते हैं कि अजीजन बाई पुरुष सिपाही की तरह तैयार होती और हमेशा अपने साथ एक पिस्तौल रखती थी. उनके घर पर कई बार भारतीय सिपाही योजना बनाने के लिए जुटते थे. कहा जाता है कि अजीजन बाई ने कई अंग्रेजी सिपाहियों को गुपचुप तरीके से मौत के घाट उतारा था.
Samuel Cooke, known professionally as Sam Cooke, was an American singer, songwriter, civil rights activist and entrepreneur. Influential as both a singer and composer, is commonly known as a king of soul for his distinctive vocals and importance within popular music. He began singing as a child and joined the Soul Stirrers before moving to a solo career where he scored a string of hit songs. Dear listeners, let's listen to this song, Wonderful World by Samuel.
Don't know much about history. Don't know much biology. Science book. Don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be.
और श्रोता, अब हम एक ऐसे सिनेमा के सितारे को याद कर रहे हैं जो राइटर डायरेक्टर भी थे और जबरदस्त एक्टर भी, जिन्होंने गाइड और जॉनी मेरा नाम जैसी फिल्में देकर देवानंद को सुपरस्टार बना दिया. हम बात कर रहे हैं विजय आनंद की. चेतन आनंद और देवानंद के छोटे भाई विजय आनंद का जन्म आज ही के दिन 22 जनवरी 1934 को पंजाब के गुरदासपुर में हुआ था. विजय आनंद इस दुनिया से अलविदा कह चुके हैं. 23 फरवरी 2004 को इन्होंने हमसे अलविदा कहा, लेकिन विजय अपनी फिल्मों के जरिए आज भी हमारे बीच जिंदा है. 1954 में रिलीज हुई फिल्म टैक्सी ड्राइवर का डायरेक्शन चेतन आनंद ने किया, जबकि फिल्म में एक्टर और निर्माता देवानंद थे. ये फिल्म खूब चली, जिसके बाद विजय आनंद फिल्म इंडस्ट्री को अच्छी तरह से समझने लगे. इसके बाद विजय आनंद ने काला बाजार और तेरे घर के सामने जैसी फिल्में बनाई.
घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने.
दुनिया बसाना कोई
वफाएं हो तो तूफा किनारा है बिजली।
ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। इसके अलावा आर के लक्ष्मण के उपन्यास पर आधारित गाइड फिल्म से विजय ने बोल्ड सब्जेक्ट को बेहद संजीदगी से दर्शकों तक पहुंचाया और गाइड फिल्म ने तमाम नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड जीते। इसके अलावा मैं तुलसी तेरे आंगन की फिल्मों में विजय आनंद ने अभिनय किया जो काफी सराहा गया।
मैं तुलसी तेरे आंगन की
Michael Hutchins was an Australian musician, singer-songwriter and actor who co-founded the rock band INXS, which sold over 60 million records worldwide and was inducted into the ARIA Hall of Fame in 2001. Hutchins was the lead singer and lyricist of INXS from 1977 until his death. He also recorded some solo material and acted in feature films including Dogs in Space, Frankenstein Unbound and Limp. Here's the song The Passenger from the movie Batman Forever, sung by Hutchins.
I am a passenger in a ride and a ride, ride through the city's backsides, see the stars come out of the sky, yeah, the bright and hollow sky.
T.M. Krishna is a Carnatic music vocalist, writer, activist and author. As a vocalist, he has made a large number of innovations in both the style and substance of his concerts, thereby inviting controversy from some quarters. As an activist, he has championed a number of causes connected to the environment, the caste system, communalism, religious reform, reform of social practices and so on. Let's listen to the Carnatic music legend, T.M. Krishna.
देवकी परमानंदम देवकी देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे।
कर्नाटिक म्यूजिक के बाद भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध तेलुगु फिल्म अभिनेता के बारे में भी बात कर लेते हैं। ए नागेश्वर राव इन्हें कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा सन 2011 में दूसरा सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान पद्म विभूषण और 1990 में भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
ములుకులొలుకు చెలి చెల్తనుండగా వేరే స్వర్గము ఏలను ప్రేమ యాత్రలకు బృందావనము నందనవనము।
और श्रोताओं, आज के दिन हमें भारत के प्रसिद्ध गायकों में से एक नरेंद्र चंचल ने अलविदा कहा। मुख्य रूप से उन्हें माता के भजन गायक के रूप में जाना जाता रहा। नरेंद्र चंचल ने बहुत से भजन और हिंदी फिल्म में गीत गाए। उनके गीत के बिना हर दुर्गा पूजा अधूरी होती। पूरे उत्तर भारत में उनका बड़ा नाम है और नरेंद्र चंचल की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अमिताभ बच्चन से लेकर शोमैन राज कपूर की फिल्मों में गाने गाए। फिल्म बेनाम में गाया गया उनका गीत आज भी लोग खूब पसंद करते हैं। तो आइए सुन लेते हैं ये प्यारा सा गीत।
चल
और श्रोताओं, कल बसंत पंचमी भी है, तो इसकी भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि हमें कहना होगा आपसे अलविदा, तो इसके साथ ही नीना और फरहत को दीजिए इजाजत कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की।
स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट इज समाचार प्रभात, आवर हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ सुपर्ब डे, सीजन्स ग्रीटिंग्स,
नमस्कार।